On behalf of the Management Committee of Bharatiya Mandir, I would like to welcome Dr. R.K., who has come from South India. I'll give a brief introduction about him. And all the people here are most welcome. If they would like to, we will sit in the front or else wherever you are seated, that will be fine. Dr. Murarji Ramakrishna is a disciple of Vedamoti, the Holy Sri Ram Sharma Acharyaji. He holds a doctorate in chemistry. The foundation for his spiritual life. Banaras is the spiritual capital of India and arguably to the whole world. Dr. Ram Krishna, throughout his life, has been learning the essence of Gayatri as well as all the other scriptures. He masters the practices taught by these masters very fast to join His Holiness Sri Someshwarala, the grandfather of Dr. Varela. Sri Ramakrishna guided and moved from flower to flower in search of nectar. Dr. R.K. underwent disciplines. Under the direction of his guru, Dr. R.K. started his spiritual work in Andhra Pradesh, complete surrender to his master as a celibate. Workshops or sadhana shibirs conducted by Dr. Murarji Sri Ramakrishna. Glimpse of countless numbers of workshops conducted by Dr. R.K. I'll just give you a brief and then I would like to invite Dr. G to give us a talk on the subject matter of Ramayana in present day life. The workshop on inner awakening in Ashwamedh Mahayagna, meditation to meditation. Talk on creating inner balance using framework of yoga in Wellbach College. Workshop on inner awakening at Stanford, Connecticut in the USA. Talks on scientific spirituality in Wang Center, New York, USA. There are numerous. I can go on, but I would think rather than giving an elaborate, endless list of things, I would rather that we listen to Dr. R.K., knowledge from him, and if we can please observe silence during the period throughout, please. Thank you.
आजकल मैं जहां भी जाता हूं, सबको सुनाई पड़ रहा है ना? Those who are sitting on those chairs. तो मैं जब भी जहां भी जाता हूं, हमें एक विचित्रता नजर आता है. मैं सोच रहा था कि मैं कैसे शुरू करूं वो विचित्रता. जो होना नहीं चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. तो जब मैं यहां आया तो हनुमान चालीसा हमारे हाथ में लगा. लगा का मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जानता हूं, मुझको ऐसा लगा जैसे हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम ये बात कहो. जिस किसी भी मंदिर में हम जाएं, हम क्यों जाते हैं ये भूल जाते हैं. तो पहली बात जो मैं ये बताना चाहता हूं रामायण के बारे में बताने के पहले, पहले हम मंदिरों का उपयोग करना जाने. ज्यादातर हमको बुरा लगता हो मेरा कहने की बात तो हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये जन स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर आदमी अपने मन की बात बोल सकता है. तो जब मैं मंदिर में जाता हूं तो हमको सब भिखारी ही भिखारी दिखते हैं, भीख मांगने वाले दिखते हैं. कुछ अंदर आते हैं, कुछ बाहर बैठे रहते हैं. यहां की बात तो मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन जब आप भारत देश जाएंगे तो मंदिर के पायदान में जब चढ़ते हैं सीढ़ियां तो सब भिखारी भिखारी बैठे रहते हैं. और हम क्यों जा रहे हैं? हम भी भीख मांगने जा रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान से मत मांगो, हम लोगों को समझना ही है कि भगवान से मांगना नहीं, छीनना है, डिमांड करना है, मेरा ये हक है, मैं तुमसे ये मांगने आया हूं। तो इसलिए नहीं मांग रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि एक तुम ही हो जिनसे मैं डिमांड कर सकता हूं। जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हो तो विद्यालय जाता है तो पढ़ने जाता है, सीखने जाता है, तो वहां सिखाने वाले रहते हैं, सिखाते रहते हैं, बाद में परीक्षा होता है। जब परीक्षा होता है तो वो ये नहीं कहता है कि हमें पास कर दो, वो डिमांड करता है कि हमने ये लिखा है ये ठीक है तो हमको तो पास होना ही है। लेकिन देवालय आते हैं तो देवताओं से हम ये नहीं पूछते हैं कि हमारा हक है, तुम मांगते हो तुम्हारी कृपा चाहिए, कृपा नहीं अपना हक मांगना सीखो। तो देवालयों का जो आधुनिक रूप रेखा है उसे तीन तरह से बदलना है। वो तीन तरह से हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये तीन लाइन हम भूल जाते हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ छाजे। पढ़ तो लिया हमने, ये हनुमान जी का वर्णन हो रहा है। और हनुमान के बारे में हम लोग कहते हैं कि वो हमारा सब संपदाएं, भूत पिशाच सब क्लेश वो हटा देते हैं, लेकिन वो हटाते किस लिए हैं, किस तरह से हैं, उसका वर्णन यहां पे है, उसको हम देखते नहीं। तीन चीज उसमें स्पष्ट रूप से वो बता रहे हैं कि हाथ वज्र, हाथ में क्या है हनुमान जी के, वज्र है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, फ्लैग झंडा है उनके हाथ में, और कंधे पे क्या है, जनेऊ छाजे। तो ये तीन चीज हमें मंदिरों से सीखना है। ये तीन चीज हमें अगर मिल जाए तो हनुमान जी से आप भीख मांगने नहीं, आप डिमांड कर सकते हैं, भाई हम तो वही काम कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, हमारे हाथ में वज्र है, हमारे हाथ में ध्वजा है, और हमारे कंधे पे जनेऊ है। जैसे इंजीनियरिंग हम पढ़ने जाते हैं या मेडिसिन हम पढ़ने जाते हैं तो हम पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं। अब जब सीखने के बाद जब उसको हम पूरी तरह सीख लेते हैं तो जब कोई डॉक्टर बनता है तो उसके गले में स्टेथोस्कोप पड़ जाता है, लेकिन स्टेथोस्कोप यूज करने के लिए उसको 5 साल सीखना पड़ता है कि कैसा करना है, क्या करना है। तो पूरी रामायण हमें यह बताती है कि हम किस तरह हनुमान जी बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम हनुमान से बड़े हो जाओगे या हनुमान के बराबर हो जाओगे, मैं कह रहा हूं हनुमान जैसे हो जाओगे। दोनों में अंतर सीखो, दोनों में अंतर जाने। साइंस में यह अंतर हमको स्पष्ट दिखता है, इसीलिए आज की आध्यात्मिकता को हमो वैज्ञानिक आध्यात्मिकता बनाना है, साइंटिफिक रिलीजन। क्या साइंस उसमें है, एक व्यक्ति ने कोई नियम दिया तो साइंस में कोई दूसरा व्यक्ति वो नियम फिर नहीं ईजाद करता है, फिर नहीं कोशिश करता है। जितने साइंटिफिक स्टूडेंट्स हैं वही नियम पढ़ते हैं, दूसरा नियम नहीं पढ़ते। अब न्यूटन्स लॉज आ गए गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाले, तो फिर हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में रिसर्च नहीं करते कि हम देखें क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, हम उन नियमों का पालन करते हैं। 10th क्लास पढ़ने वाला भी आजकल न्यूटन का नियम जानता है और न्यूटन का नियम का उपयोग करता है, लेकिन वो न्यूटन जैसा नहीं हो जाता है, न्यूटन के नियम का उपयोग करता है। न्यूटन जैसा ज्ञानी नहीं है वो, लेकिन न्यूटन का नियमों का उपयोग करता है। इस तरह मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर आप हनुमान जैसे बन गए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हनुमान जी हो जाएंगे, लेकिन हनुमान ने जिस तरह अपना पराक्रम को दिखा सका अपने जीवन में आप दिखा सकते हैं। तो तीन चीजें चाहिए, इसमें लिखा हुआ है कि तीन चीज चाहिए कि आपका हाथ वज्र होना है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। आपको एक ध्वजा चाहिए, ध्वजा मतलब लक्ष्य। अब क्या चाहते हैं, मांगते तो हैं लेकिन जो चीज हम मांगते हैं उसको पाने का हक है हमें, ये हम नहीं सोचते। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा एक कहानी सुनाया करते थे, एक कहानी आप अपने दिमाग में उतार लीजिए। एक गलती सबसे होता है, एक कड़ी धूप था तो एक आदमी जा रहा था पैदल कहीं, क्योंकि धूप ज्यादा तेज था, दोपहर हो रहा था, तो एक पेड़ की छाया में चला गया कि कुछ देर मैं विश्राम करूंगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वह कल्पवृक्ष है। लेकिन चला गया, बैठ गया, वो बैठ गया, सोचा एक गिलास ठंडा पानी मिल जाता तो मिल गया, कल्पवृक्ष था वो। जब पानी मिल गया तो एक कदम और आगे बढ़ा, वो जरा खाने को मिल जाता तो खाना मिल गया। कही ये खाना नहीं, नहीं नहीं, हमको अद्भुत खाना चाहिए। वो भी आ गया, अब पेट भर खाया दोपहर के समय, तो जाहिर है उसको चाहेगा कि सोएंगे, तो सोचा ढंग का पलंग मिल जाए, वो भी मिल गया। अब सोने के बजाय वो सोच रहा है कहीं यहां कोई भूत तो नहीं है जो हमको खा जाएगा। जानते हैं क्या हुआ, फिर भूत आया खा गया। गुरुजी ये कहानी अक्सर हम लोगों से कहा करते थे कि बेटे तू जरा सोच तो क्या मांग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो तू मांग रहा है कुछ गड़बड़ कर दे। परीक्षा देने जाना है और आपने सोने के लिए बढ़िया पलंग मांगा, तो पलंग तो आ गया लेकिन परीक्षा गया। इसको ध्वजा कहा गया है यहां पर। ध्वजा मतलब तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अब जनेऊ जो हम पहनते हैं या स्त्रियां जो गले में जो आभूषण पहनती हैं जिसे मंगलसूत्र कहते हैं अक्सर, बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो जनेऊ है जो स्त्रियां पहनती हैं या पुरुष हैं जो पहनते हैं, वो जनेऊ है। वो एक विशेष प्रकार की शक्ति धारा वहां बहता रहता है, एक गले में बहता रहता है और एक बाएं से दाएं कुहनी कहते हैं ना इसको, इस एजी तक जैसे जनेऊ हम पहनते हैं तो ऐसा आता है ना, तो एक चक्र बनता है जो एक विशेष शक्ति आपको देती है। अगर आपको उपयोग करना सीखें, इंस्ट्रूमेंट रहने से काम नहीं चलेगा, इंस्ट्रूमेंट को उपयोग करना सीखना है। इस दृष्टिकोण से जब आपको लक्ष्य ही करना है, जब आपको कुछ लेना ही है मंदिरों से, तो एक ही चीज मांगिए आप, वह है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन ही जाने की माता। अब हनुमान देव जी तो कह दे रहे हैं कि भाई आपको जो है जानकी माता ने एक वर दिया, कौन सा वर दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। उन शब्दों को आप गौर से सुनिए, और रामायण में मैं आज वही बताने वाला हूं, काफी असर कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं, पांच छह महीने अगर आप उस दिशा में मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हनुमान इतना तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन अपने घर में, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में निश्चित रूप से ये सब आ सकते हैं जो आप यहां पढ़ रहे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये आपको सीखना है। अपने लिए मत मांगो कि हमें अष्ट सिद्धि चाहिए, हमको नवनिधि चाहिए। मैं क्यों चाहता हूं अष्ट सिद्धि और नदी, ताकि मैं दूसरों को दे सकूं। लेकिन तुम्हें मालूम है जब तुम देना शुरू कर देते हो तो अपने आप वह प्रवाह शुरू हो जाता है, अपने आप वह प्रवाह शुरू हो जाता है। जब आप अष्ट सिद्धि और निधि नव निधि के दाता होते हैं तो उसकी कमी आपको कहां पड़ेगी, जो है वही तो आप दे सकेंगे। तो यह लक्ष्य हर मंदिर का था कभी भारत देश में, कि ये पाठ पढ़ाया जाता था कि तुम्हें कैसे अष्ट सिद्धि मिले और नवनिधि मिले। जब गायत्री का चालीसा भी पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं, जरा सा लाइन बदलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सब समर्थ गायत्री माता। और ये लक्ष्य हम भूल जाते हैं कि हम मंदिर में तो आ रहे हैं लेकिन ये सिद्धियां क्या है ये नहीं मालूम, नवनिधियां क्या है ये नहीं मालूम। हम समझते हैं बाहर से कोई अगर धन मिल गया तो वो निधि नहीं है, असली निधि तो यहां है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या साइंटिस्ट बने या वो जो भी बनना चाहें। यहां मैं केवल इंजीनियरिंग और मेडिसिन के बारे में नहीं बता रहा हूं, अगर आप कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं तो विद्यालय जाता है आता है कुछ साल जाता है आता है, आने के बाद विद्यालय से क्या पाके लौटता है? बुद्धि पाके लौटता है, वो बुद्धि उसके लिए निधि का कारण बन जाता है। अगर वो इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग बुद्धि से धन कमाता है, डॉक्टर है तो डॉक्टर की बुद्धि से धन कमाता है, व्यापार करता है तो व्यापारिक बुद्धि से धन कमाता है। तो पूरा हम लोग भारतीय मंदिर यह बताते हैं कि दुनिया में अगर तुमको कुछ मांगना है तो बस यही तो मांगना है कि आठ सिद्धियां चाहिए आपको और नौ निधियां चाहिए, वो सब तुम्हारे अंदर है। अगर वह डेवलप हो सके तो हर मंदिर का लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो ये मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि मंदिरों को इस दिशा में कैसे ले जाऊं। उसके लिए हमें भी कुछ नहीं करना है, उसके लिए वाल्मीकि ने रामायण दिया और वेद व्यास महर्षि ने महाभारत दिया। तो ये दो चीजें हैं जिसको आपको अपनी जिंदगी में उतारने, हर व्यक्ति को। हमने एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, हमारे बच्चे फिर एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ेंगे, फिर हाई स्कूल में पढ़ेंगे, फिर कॉलेज में पढ़ेंगे। तो पढ़ाई तो बदलने वाला नहीं है लेकिन तुम बदलोगे, और जो नहीं पढ़ पाया वो कभी भी शुरू कर सकता पढ़ना। आजकल तो प्रौढ़ विद्या, एडल्ट एजुकेशन तो कॉमन हो गया है, तो तुमको ये विशेष सोचना नहीं है कि इस उम्र में मैं क्या पढ़ सकूंगा। तो सारी जो आध्यात्मिक विद्या रहस्य है जो तुम्हें आठ सिद्धियां और नौ निधियां दे सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल वर्क नॉलेज बुक रामायण और महाभारत, ये हम भूल गए। वाल्मीकि ने कहा जब तक चंद्रमा और सूरज है तब तक रामायण रहेगा। उसका मतलब यह है कि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक रामायण रहेगा। किसी को भी सीखना हो तो वही सीखना है, कोई दूसरी मेथड नहीं। रामायण आपकी उन्नति देती है, महाभारत समाज का उन्नति देता है। तो समाज की उन्नति तो बाद में, पहले अपनी उन्नति तो हो, हमें तो मालूम हो हमें क्या करना है। तो रामायण में सबसे पहले हमें एक शब्द आता है अयोध्या। अयोध्या ठीक है, राम वहां पैदा हुए, दशरथ का वह राजधानी था, लेकिन उसका मतलब क्या है, हमको क्या करना है अयोध्या से? अयोध्या से हमें सबसे पहले हमको सीखना है कि हमें हमसे नहीं लड़ना है। अयोध्या, युद्ध मतलब लड़ना, आ मतलब नहीं। तो सबसे पहले जीने की टेक्निक में, अष्ट सिद्धि नवनिधि पाने के आध्यात्मिक रहस्य में, सबसे पहला कदम जो आपको लेना है कि हमें अपने आप से नहीं लड़ना है। हम हमेशा अपने आप से लड़ते हैं, मैं ये आदत नहीं छोड़ पा रहा हूं, वो आदत नहीं छोड़ पा रहा हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं। आपको अपने शरीर से नहीं लड़ना है, अपने मन से नहीं लड़ना है, अपनी आदतों से नहीं लड़ना है। अयोध्या, तो फिर आपको क्या करना है? आपको दशरथ बनना है। दशरथ मतलब वह जो दसों इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, अपने नियंत्रण में रखता है। तो अयोध्या में जाने के लिए, अपने शरीर में जाने के लिए, ये असली अयोध्या है। क्यों? इसी में तो हम जीते हैं, ये शरीर नहीं रहा तो हम नहीं रहे। तो इस अयोध्या में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले तुम अपने आप से लड़ना छोड़ो। क्या करना है फिर तुमको? तुम्हें अपने दशम इंद्रियों पर नियंत्रण लाना है, नियमन करना है। लेकिन हम वहां पढ़ते हैं दशरथ की तो तीन पत्नियां हैं, अब हम कहां से तीन पत्नी लाएं? है हमारे पास तीन पत्नियां, यह शरीर तीन पत्नियों के साथ जीता है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। क्या चीज हुआ? हम जागते रहते हैं, स्वप्न देखते रहते हैं, जगे हुए भी जिसको डे ड्रीमिंग कहते हैं, या फिर सोते रहते हैं डीप स्लीप। तो यह जो अयोध्यावासी, अयोध्या मतलब हमारा शरीर, इसमें हमको लक्ष्य क्या है कि इंद्रिय वह करे जो मैं चाहूं। दश कंठ नहीं बनना है कि इंद्रियों के वश में चला गया वो, यही अंतर है। तो आजकल शायद हम दस कंठ हैं, शायद दस कंठ भी नहीं, कोई कंठ नहीं है, क्योंकि अगर कोई हमारी इच्छा या कोई चीज पूरी नहीं होती है तो हम चिल्लाते भी नहीं, चुप रह जाते हैं। जबकि रावण का मतलब है जो चिल्लाता है, संस्कृत में रावण का मतलब है शोर मचाता है, ज्यादा चिल्लाता है। तो इस अयोध्या के अंदर जो चीज जी रहा है, जिसका रस सभी योगी और ऋषि पीते हैं, रमयते इति रामः, श्री राम, उसकी उत्पत्ति होना है। कब होगी? जब दशरथ अपने तीनों पत्नियों के साथ एक मिलाप में आता है कि नहीं, अब हमको पुत्र चाहिए। पुत्र मतलब रिजल्ट, जो हम काम कर रहे हैं वो फल जो होता है वही तो पुत्र हुआ। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमको जानना है कि हम जागे हुए हम क्या कर रहे हैं। हम सब जगे हुए हैं, तभी तो हम यहां आके बैठे हुए हैं कि फलाने टाइम में फलाने जगह फलाना व्यक्ति बोलेगा, हम सब लोग सुनना चाहते हैं, हम उनको जानते हैं उनके बारे में। तो हम सब जगे हुए हैं, आ गए यहां पे। लेकिन क्या हम वाकई जगे हुए हैं? नहीं जगे हुए, क्योंकि जब भी हम कुछ सुनते हैं तो आप सुनते नहीं हैं, आप विश्लेषण करते हैं। यह आदत छूटनी है पहले। जब आप कोई चीज सुन रहे हो तो सुनो बस, बाद में विश्लेषण करो, पहले वो बात पूरी हो जाने दो। जो वो व्यक्ति कहना चाहता है उसको पूरा कहने दो, लेकिन जहां वो कुछ कहता है आपको कुछ और याद आ जाता है कि वहां हमने ये सुना, या हमारे गुरु ने ऐसे कहा, या हमारे परिवार में ऐसे बोला जाता है, ये जो बोल रहा है ये ठीक नहीं, आप वहीं पे मार्क देना शुरू कर देंगे। तो आप जागे हुए एग्जामिनर हमको लगते हैं, सुनने वाले नहीं लगते कि ये जो बोल रहा है वो किस उद्देश्य से बोल रहा है, ये कहां आपको ले जाना चाहता है, ये दृष्टिकोण होना चाहिए। जब यह दृष्टिकोण है तो आप जगे हुए हैं, और जब आप जगे हुए हैं इस तरह तो एक एक घटना जो है आपके जिंदगी में इतनी शक्ति देगी जैसे आपने सूरज को जो है खा लिया। हनुमान जी के जीवन में ही तो पहली घटना घटती है कि हजारों हजारों मील दूर, हजार कोस दूर जो एक लाल फल दिखता है तो उसको निगल जाता है, और हम समझते हैं वो तो हनुमान जी हैं जो निगल सका, हम नहीं निगल पाते। आप भी निगलते हैं रोज, निगलते हैं और भूल जाते हैं, आप उसके बारे में सोचते ही नहीं कि हमने सूरज को निगला। मुंह से नहीं निकला तो आप आंख से निगलते हैं, वो लाल रोशनी तो आता ही है ना। भाव समझ में आ रहा है ना मैं जो कहना चाहता हूं? कुछ इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि रामायण के बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूं, रामायण तो आप सब जानते हैं, शायद हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, लेकिन यह रामायण हमें जीने की ढंग बता रही है, वो सीखना है आपको। और यह विश्वास कर लीजिए, अगर आप सीख लिए तो बस तुरंत रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं कि आपको कल रिजल्ट आएगा। अगर आपने समझ लिया तो आप अभी से आप शुरू कर सकते हैं। तो अयोध्या हमारा शरीर, हमारे शरीर में हमेशा लड़ाई चलता रहता है, हमेशा लड़ाई चलता रहता है। उसको रोकिए, आप रोकिए नहीं, भूल जाए, अब लड़िए मत। शरीर जो करना चाहते हैं उसको करिए। श्री कृष्ण भी स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि आप जो भी काम करते हो करो, चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो। भगवद गीता कर्म योग में वो कहते हैं, स्वधर्म में जैसा भी आपका स्वधर्म हो, अगर वो दोषयुक्त हो भी मत छोड़ना उसको। बी नेचुरल, बी नेचुरल, बी नेचुरल। अब इस अयोध्या में हमें क्या करना है बताने के लिए मैं बता रहा हूं। आपके 10 इंद्रियां 3 लेवल्स में काम करती हैं। जागृत अवस्था में काम करती है, स्वप्नावस्था में काम करती है, निद्रावस्था में काम करती है। और यहां पे हम इंद्रियों का काम नहीं लेते, इंद्रियों के दास बन के जीते हैं। अभी तक हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कह सकता कि नहीं, मैं तो वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं, वही नहीं करता हूं जो इंद्रिय चाहता है। और कई लोग हमारे पास आके कहते हैं कि मास्टर साहब आप तो कहते तो हैं जप करने के लिए, हम नियम लेता हूं कि 1 घंटा जप करूंगा, और मैं बैठता हूं हमारा मन चढ़ जाता है। हम कहते तुम झूठ बोल रहे हो कि बैठ नहीं सकते। कहते ऐसे आप कैसे कह रहे हैं। अरे जब तुम 3 घंटा सिनेमा हॉल में बैठ सकते हो और जप करने के लिए तुम नहीं बैठ सकते, क्या मतलब है इसका, तुम झूठी तो बोल रहे हो। टीवी में सीरियल आता है तो हर काम छोड़ के उस समय आ जाते हैं। यहां तो हमें नहीं मालूम ऐसे सीरियल है कि नहीं, लेकिन साउथ इंडिया में कुछ ऐसे सीरियल है जो मैं भी देखता हूं और उस समय हर काम छोड़ देता हूं। और वो सीरियल आने के दिन हम क्लास भी करता हूं, उस समय नहीं लूंगा, मुझको सीरियल देखना है। अगर वहां बैठ सकते हो तुम, सिनेमा हॉल में बैठ सकते हो, अगर कुछ नहीं तो गप मारने में समय बीत जाता है। अगर वहां आप बैठ सकते हैं तो ध्यान में आप क्यों नहीं बैठ सकते हैं, जप में क्यों नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां नहीं चाहती। क्योंकि सिनेमा देखने में या गप मारने में इंद्रियां कहते हैं हां इसमें बड़ा रस आ रहा है। तो ये तो केवल एक टेक्निक है जिसको आपको देखना है कि अगर हम यह काम करते हैं तो हमको अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिलने वाले, तो कौन आपको रोक सकता है करने से, आप उस दृष्टिकोण से ही नहीं बैठते। लेकिन अगर इंजीनियरिंग पढ़ने से हमें फायदा होने वाले हैं तो कितने लोग हैं जो अपने घर को जमीन को सब जो गिरवी रख के पढ़ाते हैं, लोगों को सालों पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ऊंचा है, उनको मालूम है कि अगर यह पूरा हो गया तो वह लाभ होने वाला है। और यहां स्वयं हनुमान जी कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं कि बस तुमको यह करना है कि 10 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखो। वह मत करो जो इंद्रिय चाहता है, वह करो जो करना है। इसके लिए कोई बड़ी बड़ी साधनाएं आपको नहीं करनी, केवल आधा घंटा 24 घंटों में इसके लिए दीजिए। उस आधे घंटे में और कुछ नहीं सोचूंगा मैं, बस मैं यही करूंगा। और जब भी हम पूजा करते हैं, बैठते हैं पूजा करने के लिए, तो हम 3 चीजें भूल जाते हैं कि ये पूजा आपको 3 दिशाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। जो भी पूजा आप करें, जो भी क्रिया आप करें, चाहे कोई भी लक्ष्य हो, अगर उसमें 3 चीज मिल जाए तो निश्चित रूप से सफल होगा, जिसको गुरु जी कहा करते हैं उपासना साधना आराधना। तो हम तो उपासना करना ही भूल गए। भगवान के मंदिर में तो आते हैं, दर्शन किया, परिक्रमा किया, चल दिया, क्या उपासना किया आप? उपासना का मतलब होता है नजदीक बैठना। मंदिर में आए तो किसके नजदीक बैठे आप, चाहे वो राम हो, चाहे शिव जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महादेव हो, क्या आप उनके पास बैठे, आपने उपासना किया? नहीं, हमने तो उनके ऊपर पानी चढ़ा दिया। पता नहीं ज्यादा ठंडे में उनके सिर पे पानी डालते हैं तो कितनी बार उनको जुकाम हो जाता होगा, हमें तो नहीं मालूम। हमें पार्वती जी से पूछना होगा कि अकलैंड वाले जब आपके शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं तो आपको कितनी बार जुकाम आता है। उपासना का यह मतलब नहीं कि आप पानी डाल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो पानी डालने के विधि विधान में आपके इंद्रिय पे कितना निग्रह आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह आप अपने इंद्रियों को अपने वश में लेते हैं, पंचोपचार पूजा कहते हैं, उपासना पांच लेवल्स में हम करते हैं। आपको तो मालूम है क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, पहले या बाद में पुष्प चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फिर प्रसाद चढ़ाते हैं, पंचोपचार पूजा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो आप कर्म कांड कर रहे हैं उसके पीछे आपके इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लाने की टेक्निक बताया जा रहा है, वो टेक्निक तो हम भूल जाते हैं। जब हम फूल चढ़ाते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम फूल जैसा जीना चाहते हैं, जिस तरह पुष्प खिला रहता है सुंदर लगता है। जब मैं यहां से बाहर जाऊं मंदिर में तो मैं हंसता रहूंगा, मैं लोगों को हंसाता रहूंगा, और जैसा पुष्प एक सुगंध देता है उस तरह हमारा वाक्य दूसरों को तंग नहीं करेगा, दूसरों को हिंसा नहीं करेगा, उनको प्रेरणा देगा। इस भावना से आप फूल चढ़ाइए, कहां भावना जाता है, कोई भी फूल चढ़ा देते। फूल चढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते। अगरबत्ती का मतलब क्या है, सुगंधित वातावरण। आप जहां भी हो क्या लोगों को लगता है इसके आने से हमें अच्छा लगता है, उस तरह का वातावरण अगर आप बन गए तो अपने अगरबत्ती ढंग से जला दिया। दीपक ज्योति जलाते, ज्योति का हम मतलब ही नहीं जानते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं जब उनको कोई समस्या आता था तो दीपक के पास बैठते थे, सॉल्व हो जाता था। गुरु जी तो हमारी समस्या है क्या है, कुछ नहीं। अगर हम दीपक के पास बैठ जाते हैं तो हमारे समस्याएं निश्चित रूप से निवारण हो जाना है। तो यह भावना, इस भावना से आपको कुछ करना नहीं है, बस ये फील करना है। ये याद रखिए, मैं जो बता रहा हूं यू हैव टू फील इट। वो अनुभूति आपको आनी है कि मैं पुष्प जैसा हूं, अगरबत्ती जैसा हूं, दीपक जैसा हूं। उसके बाद गंध चढ़ाते हैं। गंध का मतलब क्या है, ये हमेशा आप याद रखिए, जहां भी गंध का प्रयोग होता है वो जल्दी से भौतिक जगत में मैनिफेस्ट हो जाता है, इसलिए गंध चढ़ाया जाता है, गंध का लेपन इसलिए किया जाता है। हमें तो लिंक ही नहीं मालूम, लेकिन अगर कुछ जो योग विद्या के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि पृथ्वी का लक्षण ही गंध है, स्मेल। तो अगर आपने गंध को उपयोग करना सीख लिया तो आप जो चाहें वो भौतिक जिंदगी में पा सकते हैं। और ये आपको तीन लेवल्स में करना है, मैं बता रहा हूं, जागृत अवस्था में ही नहीं, आपको स्वप्न में भी करना है और सोए हुए भी करना है। ये तीनों चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। जब ये तीनों चीज आप प्रैक्टिस कर जाते हैं तो चार बच्चे अवतरित होते हैं आपके अंदर, जिस तरह दशरथ हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो हमारे अंदर कितना राम पैदा हुए, कितने लक्ष्मण पैदा हुए, कितने भरत पैदा हुए, कितने शत्रुघ्न पैदा हुए, ये सोचिए। और इसको देखने के लिए एक ही टेक्निक आपके पास है कि आपका श्वास बदलना है, आपको सांस लेने की ढंग बदलनी। और वो श्वास का महत्व ही हम भूल जाते हैं, हम भूल गए, हम बिल्कुल भूल गए कि हम सांस ले रहे हैं। कभी एक जुकाम हो गया या कुछ हो गया तो याद आता है कि हां हम सांस ले रहे हैं, नहीं तो आपकी संपूर्ण जीने की पूरी आधारशिला श्वास है। पैदा होते ही आप श्वास लेना शुरू करते हैं और अंत कब होता है आपका, जब श्वास रुक जाता है। अगर कोमा में भी हो कुछ सालों से, अगर श्वास चलती रहती है तो डॉक्टर कहते हैं तो जिंदा है, उसको जीवित रखते हैं। कोमा का मतलब तो कोई इंद्रिय नहीं काम करता है, फिर भी ही जलाए। क्यों अलर्ट है, क्योंकि श्वास ले रहा है। इस श्वास को जब आप एक आयुध के रूप में, एक वेपन के रूप में उपयोग कर सकें तो शस्त्र बनता है। तो आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या व्यापारी हैं या साइंटिस्ट हैं या पॉलिटिशियन हैं, वह नहीं काम कर रहा है, एक्चुअली काम आपका श्वास कर रहा है। तो जब श्वास को हम अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह बनता है शास्त्र। तो वही घटना घटती है दशरथ को भी, अंधेरे में वो एक तीर चलाते हैं। आपको कहानी तो मालूम है ना रामायण का, तो बताना है वो कहानी। एक शाप लगता है उनको कि वो अंधेरे में एक तीर चलाते हैं और तीर वो समझते हैं किसी जानवर को लगेगा, वो लग गया किसी मुनि को। क्या ऐसा नहीं आप समझते हैं कि हमारे भी अस्त्र ऐसे ही चल रहे हैं, हमारे श्वास भी ऐसे ही चल रहा है, हमें ये मालूम ही नहीं कि हम श्वास कैसे ले रहे हैं। इसके लिए प्राणायाम ज्यादा जरूरी है। मैं साधना के बारे में बता रहा हूं, अभी उपासना हमने बता दिया ना कि उपासना का मतलब जो चीज आप पाना चाहते हैं बस उसके निकट बैठे, वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा, तुमको कुछ करना नहीं है, तुमको बस उसके निकट बैठे रहना है। इस दृष्टि से कि हम उसके निकट बैठे। आधुनिक विद्या भी तो आपको ऐसे ही आती है ना, लेक्चरर पाठ पढ़ाता रहता है, आप बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। एक चीज और करते हैं, सुनने के बाद याद रखते हैं, श्रुति स्मृति, वही तो वेद का रहस्य है। हम कहां सुनते हैं वेद क्या बोल रहा है, हम तो मंत्र पढ़ते चले जाते हैं जिसका हमें कोई मतलब ही नहीं पता है। तो इन मंदिरों में मेन चीज लोगों को यह बताना है कि राम की उपासना से कौन सा अस्त्र आप चला रहे हैं। और वहां भी आपको बड़ी तजीब होगा कि अगर शिव की मूर्ति आप कैसे पहचानते हैं, तो शिव अगर है तो शिव है, धनुष बाण है तो राम है, चक्र है तो कृष्ण है। हमें क्या मालूम कृष्ण कैसे दिखता था, राम कैसे दिखता था, शिवजी कैसे दिखते हैं। मूर्तियों में वो किसकी मूर्ति है केवल हम उनके आयुधन के आधार पे महसूस करते हैं कि नहीं। कभी आपने देखा कि शिव के हाथ में चक्र, कभी आपने देखा राम के हाथ में त्रिशूल। मैं क्या कहना चाहता हूं कि यह आयुध आपका श्वास है। अब यह श्वास जब आपकी अंदर के राम से निकलता है, जीवात्मा से निकलता है, तो यह शस्त्र आपके जीवात्मा का घर बन जाता है, तो वह रामायण होता है। राम अयन, अयन मतलब तुष्टि भी कह सकते हैं, घर भी कह सकते हैं। तो वास्तविक रामायण आपका श्वास है, इसीलिए जो राम का कार्य करना चाहेगा उसको श्वास का पुत्र होना ही है। ये मैं कहता हूं आप हनुमान जी होंगे ही, क्योंकि हनुमान का मतलब कौन, वायु पुत्र। कौन कह सकता है कि आपको वायु पुत्र नहीं है, जहां सांस रुकी आप गायब, जहां सांस है आप हैं। लेकिन ये श्वास हमको कैसे लेना है, इसकी साधना आपको 24 घंटे करना है, जिसको हम प्राणायाम के नाम से सीखते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि जो हम प्राणायाम करते हैं वह आपका अस्त्र होना चाहिए। आप बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं, और आपको मालूम है दैनंदिक जीवन में भी जैसे जैसे आप उच्च पद पे जाते हैं काम कम होता है और बैठ के बोलना ज्यादा होता है कि नहीं। उनका आसन कहां पर बैठ के वो बोल रहा है, जिस पोजीशन पे वो बैठ के बोलता है वही तो आपका फल देता है। लेकिन उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए उसको एक विशेष प्रकार का श्वास लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है उस श्वास को। तो पूरा रामायण में जहां वानरों का नाम आता है उस श्वास की टेक्निक्स है, नल नील सुग्रीव अंगद हनुमान, ये मेन श्वास है। क्या तुम नल के जैसे श्वास लेते हो, नील के जैसे श्वास लेते हो, वो दोनों इंजीनियर थे। अंगद के जैसे श्वास देते हो, बिल्कुल अडिग, वो पाइप जमा दिया तो रावण भी कुछ नहीं कर पाया। तो वो आपके श्वास के ऊपर आधारित होती है कि आप कितने स्थिर होते हैं। सुग्रीव कैसे आप बोलते हैं, बोलने का ढंग कैसा है। इंजीनियर एक तरह से बोलता है, डॉक्टर एक तरह से बोलता है, सर्जन एक तरह से बोलता है, और बड़ा गड़बड़ी हो जाता है। सर्जन के पास जाओ तो कहेगा ऑपरेशन करा लो जल्दी जल्दी, डॉक्टर से पास बोलेगा तो वो कहेगा ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, तुम दवा लेते रहो। अब तुम फंस गए, तुमको ऑपरेशन कराना है कि दवा लेना है। लेकिन एक विचित्र चीज तुम्हारे समझ में आ रहा है, हम लोगों के समझ में, कि निर्णय डॉक्टर नहीं तुम करते हो, तुम समझते हो डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं कर रहा है। एक डॉक्टर ने कहा सर्जरी करो, एक डॉक्टर ने कहा दवा खाओ। अगर तुमने दवा खाया तो निर्णय उसका हुआ कि तुम्हारा हुआ? समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? तुम्हारा निर्णय, हर समय तुम्हारी विश्वास, तुम्हारा निर्णय तुमको बताता है तुमको क्या करना है। लेकिन हमारे पढ़ने का ढंग, सोचने का ढंग ऐसा हो गया कि हमारे ही निर्णय को हम किसी के ऊपर थोप देते हैं कि उसके वजह से हमने ऐसे किया, उसके वजह से हमने किया। तो मैं बता रहा था कि अयोध्या में, इस अयोध्या में बैठा हुआ दशरथ जब अपने जागृत स्वप्न सुषुप्ता अवस्थाओं के साथ हो जाता है तो चार बेटे जन्म लेते हैं उसको। यह घटना हमारी जिंदगी में आज ही हो सकता है, क्योंकि आप इतने सालों से इसको सुन रहे हैं कि मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, केवल आपको सिर्फ सोचने का ढंग आपको समझ में आ जाए तो हो गया। सोचने के ढंग में मैंने क्या कहा पहले? उपासना, साथ बैठो, भगवान के मंदिर में आकर बैठो। ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि हम घर पर बैठ के पढ़ लेंगे, विद्यालय जाते हैं, लेकिन देवालय को उतनी ही रेगुलर विजिट होनी है जितनी रेगुलर आप विद्यालय के लिए जाते हैं। केंद्र ऐसा बनना, और जब आते हैं उस समय तो उस समय लोगों को बैठा के उपासना सिखाइए कि आप अपने आप को जिस उपास्य देवता के बारे में आप पूजा कर रहे हैं उस जैसा बन जाएं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो इंजीनियर हो जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो डॉक्टर हो जाते हैं, तो शिव के मंदिर में जाके शिव क्यों नहीं बनते हो? राम के मंदिर में जाके राम क्यों नहीं बनते हो? दुर्गा के मंदिर में जाके दुर्गा क्यों नहीं बनते हो? यह ज्यादा जरूरी है कि हमें उस जैसा बनना है। तो इस मंदिर के लिए आधा घंटा हम बैठ के उनका जीने के लक्षणों को सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। और इसके बाद तुरंत आपको फल चाहिए। हमने आज काम किया, आज ही फल होना है, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। छालन है परम पूज्य गुरुदेव का और ऋषियों का कि जो तुम चाहते हो उसके लिए तुमको इंतजार नहीं करना है, तुम आज ही पा सकते हो, अभी पा सकते हो, तुरंत पा सकते हो। केवल तुम्हारा सोचने का ढंग ऐसा होना चाहिए जैसे जागृत अवस्था में तुम नहीं सोच रहे हो, तुम ऐसे सोच रहे हो जैसे स्वप्न अवस्था में सोचते हो। इसको जरा ढंग से समझिए, इसी को सुमित्रा कहते हैं। इसीलिए बिना लक्ष्मण का राम कुछ नहीं कर पाया। और आपको मालूम है लक्ष्मण की पत्नी ने सुई नहीं, उर्मिला 14 साल लक्ष्मण 14 साल सोया नहीं और उर्मिला सोती रही। क्यों? लक्ष्मण को सोना ही नहीं है, उसको तो सपनावस्था में रहना है, ड्रीम कॉन्शियसनेस में रहना है। तो अगर तुमको स्वप्न देखने की टेक्निक आ गया तो हर ऋषि, हर वैज्ञानिक, आध्यात्मिक वैज्ञानिक ये कहता है जो तुम चाहते वो तुरंत हो जाएगा। आपने इस कलयुग में भी कई घटनाएं सुना है जहां पे सोने के मंदिर हिमालय के ऊपर लाहरी महाशय के गुरु ने, जिसको आपको मालूम है लाहरी महाशय के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग कोई? लाहरी महाशय स्वामी योगानंदा, परमहंस योगानंदा, उनके गुरु के गुरु, जो गुरुजी के भी गुरु थे, दादा गुरुजी जिसको हम कहते हैं। तो जब लाहरी महाशय हिमालय पे पहुंचे तो उनके पिछले जन्म में उनको एक इच्छा थी कि वो एक सोने के मंदिर में, सोने के राजप्रासाद में, मंदिर का मतलब टेम्पल नहीं, एक किंगली पैलेस, एक राजभवन में हमको दीक्षा लेनी, उनकी इच्छा थी उस समय पिछले जन्म में। तो उन्होंने कहा इसमें कितनी बड़ी बात है, मैं अभी बना देता हूं एक राज मंदिर। वहां तत्क्षण एक पैलेस बन गई, तत्क्षण पूरा एक दिन और एक रात लाहरी महाशय ने उस राजप्रासाद में बिताया, बिताने के बाद उन्होंने दीक्षा लिया। हो सकता है ये अभी भी संभव है, लेकिन ये सोचने का ढंग ही हम भूल गए, स्वप्न देखने का ढंग भूल गए। स्वप्न में क्या होता है आपको मालूम है? केवल आप रहते हैं और आपका निर्मित आकृतियां रहती हैं, है कि नहीं? स्वप्न में क्या होता है? ये दुनिया नहीं रहता है, आपकी दुनिया आ जाती है। वो आपकी दुनिया आपने बनाया है। आप लोग सोचते हैं कि ये घटना घट रही, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अनेकों तरह की अनुभूतियां आपको आती रहती, लेकिन आपके लक्ष्य की दिशा में जो अनुभूतियां आपको पानी हैं, उसको अगर आप बैठ के सोच सकें, उसको चित्रित कर सकें, उसको हम ध्यान कहते हैं। ध्यान करने का असली मतलब यह है, यह नहीं कि हम बैठ गए हैं और सोचना बंद कर दिए। तो कई लोग हमसे कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने कहा कि आपको सोचना बंद कर देना चाहिए आपका मन। आपको जागृत अवस्था में बंद अगर आप कर देंगे तो अपने आप वो सपना अवस्था में ओपन हो जाएंगे। तो ये कहां घटी, ये घटना कहां घटी? रामायण में, जहां एक स्वप्न तत्क्षण संभव हो गया। ये हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते। एक आदमी जो ये सोचता ही नहीं कि हम समुद्र लांग सकते हैं। मीटिंग चल रही थी सीता की खोज में, लोग दक्षिण पहुंच गए कन्याकुमारी तक, और वहां सब जाम्बवंत तो सब लोग बैठ के सोच विचार कर रहे थे कि कौन लांघेगा समुद्र को। तो एक व्यक्ति ऐसा था जो लांग सकता था, उसको मालूम ही नहीं था कि वो लांग सकता है, क्योंकि वो वायुपुत्र है। ऐसा कोई आदमी आप परिचित हैं आजकल जो ये सोचता है कि मैं समुद्र नहीं लांग सकता हूं? किसी ऐसे वायुपुत्र को आप जानते हैं? एनीवन? हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? आप ऐसे कोई वायुपुत्र को जानते हैं जो लांग तो सकता है लेकिन उसको मालूम ही नहीं कि वो लांग सकता है? है ऐसा कोई वायुपुत्र आपके परिचित में? या मैं परिचय कराऊं? मैं यहां मिला था न्यूजीलैंड में, मैं परिचय कराऊं, शायद आप बाद में उपयोग कर सकें। अरे आप ही हैं वो वायुपुत्र, आप ही हैं। आप सोचते नहीं कि हम लांग सकते हैं, आप भी वायुपुत्र हैं। उसी तरह हनुमान जी भी सोचते थे मैं कहां कर पाऊंगा, मैं कहां समुद्र को लांगूंगा, लेकिन जब लोगों ने कहा तुम कर सकते हो तो क्या किया उसने? कुछ साधना किया, कोई विशेष प्रैक्टिस किया उसने कि लांग गया? लांग गया। ये कब संभव है? स्वप्न में ही संभव है, है कि नहीं? स्वप्न में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उस स्वप्न को चार लेवल्स में अगर आप देख सके, तो रामायण आपको बताता है कि आपको स्वप्न कैसे देखना है। कैसे देखना है? जब हनुमान स्वप्न को चरितार्थ करने के लिए वास्तव में जंप करना चाहा, तो सबसे पहला अड़चन मालूम है कौन आया? एक पर्वत आया, मैनाक पर्वत। कहा तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी ने, आपको ये कहानी मालूम है ना रामायण का, कि पुराने जमाने में क्या होता था, उस समय में त्रेता युग में पहाड़ उड़ सकते थे, उसको पंख थे, और जहां उड़ के वो जहां बैठ जाए, जाहिर है जहां भी बैठ जाएंगे तो वो शहर गया। तो इंद्र को गुस्सा आया और सबका पंख काटने निकला। तब वायुदेव ने मैनाक पर्वत को सहायता दिया कि तुम उड़ जाओ, हम भी तुमको तेजी से धकेल देते हैं, और वो समुद्र में जाके रक्षण पाया। तो जब हनुमान राम के कार्य के लिए जा रहे थे तो मैनाक पर्वत समुद्र से ऊपर उठता है। जरा ढंग से समझिए, ये आपको अगर जब आप स्वप्न देखते हो, और मैं किस तरह की स्वप्न की बात कर रहा हूं, मैं ये स्वप्न की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप सोते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप सपने ही देख रहे हैं ये मान लीजिए, तो उस समय सबसे पहला अड़चन जानते कहां से आएगा? आपके पुराने संस्कारों से आएगा, आपके पिता से आएगा। आपके पिताओं, पिता का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं भौतिक पिता का, जो आपके संस्कार है जो अंदर ऑलरेडी छिपे हुए हैं, वो ऊपर आएंगे और ऊपर जरा आराम करो, कहां उड़ के जा रहे हो, क्या बेकार की बात कर रहे हो, आराम करो, हम तुमको खाने पीने के लिए सब देंगे, आराम देने के लिए तो आया हूं। तो इसको नहीं, राम काज कर बे को आतुरा, हैव ए गोल, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको तो जाना ही है, तुम बीच में मत आओ। तुरंत क्या हुआ वहां पे? देवताओं का एजेंट आई सुरसा, राक्षसी नहीं थी वो, देवताओं के एजेंट थे। अब देवताओं को डर लगा कि ये तो उड़ता जा रहा है, लेकिन क्या ये अपने स्वार्थ के लिए जा रहा है? जो शक्ति उसको मिली क्या वो मिसयूज तो करने नहीं जा रहा है? तो क्या कि उसने बीच में आ गए कि हम तुमको खा जाएंगे। क्या खा जाएगा हमको? सफलताएं हमको खा जाएंगे। हम कुछ काम करने जा रहे हैं, कहीं कुछ और लाभ मिल गया तो हम क्या करते हैं, वो काम छोड़ देते हैं। यहां तो लाभ आ गया, यहां चले गए। तब हमको क्या करना है? जो छोटा सफलता है उसको नहीं देखना है, उससे बड़ी गोल को देखना है। तो धीरे 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 गोल की लंबाई फैलती चली गई, उसका भी सफलताओं की भी मुंह खुलता चला गया सुरसा का। लेकिन अंत कैसे हुआ? हनुमान छोटे बन गए, छोटे बन के उनके मुंह में जाके बाहर आ गए। तो ये ध्यान में इसको आपको देखना है कि हमें जो सफलताएं तो मिलती हैं जब आप इस रास्ते में जाएंगे, और मुख्य रूप से जब ये ध्यान की ये टेक्निक आप सीख लेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि तुरंत 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 आपकी छोटी मोटी इच्छाएं तो तुरंत पूरी हो जाती हैं। गारंटी है, हमने हजारों लोगों में देखा है, एक दो में नहीं, हजारों लोगों में देखा। छोटी छोटी इच्छाएं तो तुरंत पूरी हो जाती, अगले दिन, दूसरे दिन, एक सप्ताह के अंदर पूरे हो जाते हैं। ओके, पूरा हो गया, हम खुश हो गए कि हमारा ध्यान तो बहुत काम कर रहा है। बस वहीं पे रुके जाएंगे तो सुरसा के यहां रुक जाएंगे। है तो ठीक, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। उसके बाद असली गड़बड़ाया सिंह की, जो छाया को पकड़ के खींच लेता था। रामायण मालूम है ना, इसलिए हम केवल घटनाएं बताते जा रहा हूं। तो कई ऐसे हैं जो हमारे पहले काम किए हुए हैं, दूसरे तरह के काम किए हुए हैं, तो उनकी छायाएं हमको रोक देती हैं और उसकी यादें हमको रोक देती हैं। याद भी तो छाया है, तो क्या करता है वो छाया को मिटा देता है। हमको याद ही नहीं करना है ऐसा, हमको तो बस हम ये काम कर रहे हैं, बस हम करते चले जाएंगे। वहां जाने के बाद एक मेन अड़चन आता है जिसको लंकिनी कहते हैं, जो लंका की रखवाली करती थी, उसको एक घूंसे से उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये स्टेप्स आप याद रखिए, डिटेल्स तो हम बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद मालूम हो रहा है। क्या मैंने बताया? अयोध्या आपका शरीर है। रामायण में दशरथ की तीन पत्नियां हमारी वेकफुल स्टेट, ड्रीम स्टेट और स्लीप स्टेट है। इन तीनों का अगर संगम हो जाए, दशरथ और इन तीनों स्टेट्स का संबंध हो जाए, तो हमारे अंदर चार शक्तियां डेवलप होती हैं, चार एफर्ट करने की शक्ति जागृत होती है, जिसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहते हैं, या चार वेद कहते हैं। ये चार तो आगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन तीनों को भी आप समझिए कि पहले तो जो काम आप करना चाहते हैं उसका क्वालिटीज आपको जानना है। धर्म, धर्म का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हिंदू धर्मी हैं या मुस्लिम धर्मी हैं या ईसाई धर्म, धर्म का मतलब क्वालिटीज। केमिस्ट्री में जब हम रासायनिक धर्म और भौतिक धर्म के बारे में बताते हैं तो हम कोई धर्म के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं क्वालिटीज के बारे में बता रहा हूं। तो अगर आपको जिंदगी में एक सक्सेस पाना हो तो आपको जो सक्सेस पाना है उसके लिए किस तरह का धर्म हमारे अंदर होना चाहिए, किस धर्म के लक्षण हमारे अंदर होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। लेकिन यह धर्म किसके ऊपर आधारित होगा? आपके काम डिजायर के ऊपर आधारित होगा। लेकिन अगर डिजायर है, क्वालिटीज भी मालूम है, लेकिन अगर आपके पास अर्थ नहीं है, उसके लिए आवश्यक संपदा नहीं है, तो काम नहीं कर पाएंगे। तो काम, अर्थ, धर्म, जब आप ये तीनों का उपयोग करेंगे तो उससे मुक्ति पा जाएंगे। जब वो काम आपका हो गया तो उस काम से तो मुक्ति हो गया ना, वो काम तो हो गया ना। तो ये चार वेद, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चार चीज, ये चार चीज हम हर काम में उपयोग करते हैं, हर चीज में। हम लोग यहां बैठे हुए हैं और वहां क्रिकेट मैच हो रहा है, तो आपका काम जिसको सामवेद कहते हैं, टेक्निकली डोंट वरी अबाउट द नेम्स। अब आप धर्म आपका क्या कहता है, क्या लक्षण कहता है? क्रिकेट देखना है या यहां आना है? क्रिकेट देखने के लिए दूसरे तरह के अर्ध चाहिए। अर्ध का मतलब समझ रहे हैं ना? पैसे की मैं ही बात कर रहा हूं, कन्वीनियंस चाहिए या टिकट चाहिए या वहां जाने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए, ये सब हो गया आपको तो पिक्चर देखना या लेक्चर देने का मोक्ष हो गया, आपको काम पूरा हो गया। तो ये चार चीज रामायण हमें बताता है कि किस तरह हमें अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है। और वो टेक्निक वो बताता है कि आप ध्यान करना सीखिए, स्वप्न देखना सीखिए। अगर आप स्वप्न देख सके तो स्वप्न में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो आप कहेंगे इम्पॉसिबल है। स्वप्न के बाहर आने के बाद आप कहेंगे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन स्वप्न में तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप उस वेग को पकड़ सके ध्यान में तो क्या होगा, आपका श्वास बदलेगा। जब श्वास बदलेगा वो अस्त्र बन के इस दुनिया में आपको जो चाहिए वो दे देगा। यह चीज रामायण हमें बताता है। समुद्र को लांघने का मतलब ही समझिए कि समुद्र तो एक तो हुआ समुद्र, मुद्रा मतलब सील, सा मतलब वित्त। हमारे अंदर अनेकों सील हैं, अनेकों मुद्राएं, मुद्रा का मतलब समझना, जिसको जेनेटिक कोड हम कहते हैं। लेकिन आजकल के साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि जेनेटिक कोड मैं बदल सकता हूं कि नहीं, लेकिन रामायण कहता है नहीं, तुम बदल सकते हो। अगर ध्यान करना सीखो तो तुम्हारा जेनेटिक कोड बदल जाएगा। तो आपको कैसा पता चलेगा कि हमारा जेनेटिक कोड बदल गया? ध्यान करने के पहले आप अपने श्वास को देखिए, ध्यान करने के बाद आप अपने श्वास को देखिए। वो श्वास आपको बताएगा कि आप कैसे हैं। तो कई आदमी हमसे पूछते हैं श्वास से और जिंदगी से क्या संबंध है, और जूलॉजिस्ट कहते हैं कि श्वास और जिंदगी से बहुत संबंध है। अगर आप ज्यादा गति से श्वास लेते हैं तो आप कम जीते हैं, अगर आप धीमी गति से सांस लेते हैं तो आप ज्यादा जीते हैं। खरगोश, कुत्ते, ये सब जरा 35 श्वास एक मिनट में लेते हैं, वो 20-25 साल में मर जाते हैं। आदमी अगर 16-17 श्वास एक मिनट में ले तो निश्चित रूप से वो 100 साल जिएगा। और हाथी और वो कच्छप एक मिनट में 4 सांस लेती, 500 साल जिंदा रहती, 1000 साल जिंदा रहती। इतनी सिंपल टेक्निक हमें मालूम है कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे बढ़ाना है। वी नो द नॉलेज ऑफ आयु, दैट इज व्हाट इज नोन एज आयुर्वेदा। और इस चीज के बारे में स्ट्रेस ही नहीं होता है। तुम्हें यह भी नहीं मालूम, हम लोगों को यह भी नहीं मालूम कि जागृतावस्था से स्वप्नावस्था में जाने का सिर्फ एक ही टेक्निक है कि श्वास को बदलो। आप अपना सोते समय का श्वास देख लीजिए, आप खुद नहीं देख पाएंगे, किसी से कहिए कि देख लो हम कैसे सांस लेते हैं। और जगने के बाद उनसे पूछो क्या हमारे श्वास में अंतर है, निश्चित रूप से अंतर है, निश्चित रूप से अंतर है। तो अगर आप श्वास खींचने का ढंग ही अगर आप बदल दिए जगते हुए तो आप सपने के लेवल में पहुंच जाएंगे। और वहां पे क्या होता है, वही होता है जो तुम चाहोगे। तुम अपने भाग्य के निर्माता आप हो। एक शास्त्रीय वचन है, ये कोई ढाढ़स देने का वचन नहीं है कि नहीं नहीं तुम घबराओ मत, क्या घबराने की बात है। निश्चित रूप से हमारे भाग्य के निर्माता हम आप खुद हैं। अब पूरा रामायण यह साबित करता है कि यह सही बात है। कहां रावण का अस्त्र शस्त्र और सेना और कहां राम की सेना। किसी को भी थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हो तो पता चल जाएगा कौन जीतने वाला है। डाउट है आप लोगों को? अभी तुम कह सकते हो राम जीता क्योंकि तुमको मालूम है कि रिजल्ट क्या है। लेकिन अगर उस समय होते और यह पता चलता है कि दो अशस्त्र असहायक बिना सेना के बच्चे थे दोनों, 16-17 साल की आयु था उनका, और कहां रावण लंकाधिपति, तीनों लोकों का स्वामी, देवता भी उनसे कांपते हैं, और वो गया लड़ने उनसे, तो कौन जीतेगा? निश्चित रूप से रावण जीतेगा। अभी मत बोलो कि राम जीतेगा, अभी तो मालूम है। लेकिन जीतने का कारण क्या है? कभी भी राम ने और हनुमान ने कभी यह नहीं सोचा कि हम जीतेंगे कि नहीं। हम जीतेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम ये सोचो। मैं कहना चाहता हूं कि यह स्वप्न देखो तुम, ये रामायण का आधारभूत स्वप्न त्रिजटा स्वप्न है। आपने सुना होगा त्रिजटा स्वप्न। अशोक वन में रावण जो है सीता को ले जाकर बैठाता है एक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे। तो उसकी प्रहरी करने के लिए, रखवाली करने के लिए कुछ राक्षसों को उसने नियुक्त किया। तो वहां एक राक्षसी थी त्रिजटा, उसने एक स्वप्न देखा कि रावण तो हार गया। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स मिलेगा। और वो तब बोली सबसे कि तुम लोग मत सोचो कि सीता अकेली यहां बैठी है और अकेला राम वहां रो रहा है, इसलिए रावण का क्या होगा। मैंने स्वप्न देखा है और स्वप्न में रावण हारेगा। और वो चैलेंज देके बोलती है कि रावण हारेगा। तो हमारी समस्याएं जो आज हमारे सामने है, ये तो हमारे कंट्रोल में है। हम जानते हैं हमको क्या करना है, कैसे करना है, बताने का ढंग मालूम है। हजारों लोग जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी गुरु के शिष्य हो। ये बात हमेशा याद रखिए, मैं चूंकि श्रीराम शर्मा आचार्य जी के यहां दीक्षा लिया, इसलिए मैं उनको अपना गुरु कहता हूं। आप यह मत सोचिए कि आपको अपने गुरु को बदलना है, यह मत सोचिए आपको साधना विधान बदलना है, केवल आपका स्वप्न को बदलना है। हमें एक ऐसा स्वप्न चाहिए कि पूरी दुनिया में राम राज्य हो। यह स्वप्न रामायण बताता है। लेकिन राम राज्य का मतलब कौन? जितने इक्ष्वाकुवंश थे, जिस वंश के राम थे, वो सूर्योपासक थे, सूर्य पूजक थे। तो राम राज्य का मतलब क्या हुआ? वैसे लोग जो सूरज की उपासना करेंगे उनके हाथ में यह राज्य आएगा। चाहे सूरज की उपासना करो, चाहे गायत्री की उपासना करो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। सूरज ये कभी नहीं कहेगा जब तक तुम ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियः न प्रचोदयात् नहीं कहोगे तब तक हमारे किरण तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हें तो उनकी किरणों का उपयोग करना है। अब जहां तुम सूरज की किरणों का उपयोग करके स्वप्न देखना शुरू करोगे तो वह स्वप्न निश्चित रूप से सही होगा। गारंटी रामायण देती है, भगवान श्री कृष्ण भी देते हैं। इमं व्यवस्थते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। ये योग, ये साधना मैंने सबसे पहले सूरज को सिखाया, लेकिन धीरे 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 सकाले रमता योगो नष्ट परंतपा, ये योग नाश हो गया। ये 5000 साल पहले भी कृष्ण परेशान थे कि ये योग तो गया। क्योंकि योग का मतलब हम समझते हैं कोई हिंदू का है, किसी धर्म का है, ये कोई एक शारीरिक विविध भंगिमा है। नहीं नहीं नहीं, योग का मतलब है आपके अंदर के जो ये तीन सोचने के ढंग हैं। कौन सी तीन सोचने के ढंग? एक वह जो जागृतावस्था में तुम सोचते हो, एक वह जो तुम स्वप्नावस्था में सोचते हो, एक वह जो गहरी नींद में सोचते हो। हमें तो गहरी नींद में सोचना भी नहीं आता। गहरी नींद तो एक एम्प्टी स्पेस, एक ब्लैंक है। सो गए, उठने के बाद पता चलता है कि हम सोए हैं। लेकिन वह जो गहरी नींद में भी जगा हुआ सोच सकता है, वो योगी है। उसको हम समाधि स्थिति कहते हैं। तो एक्चुअली जो सपना हमको देखना है, ये देखना है कि जो योग विद्या, जो जीवन जीने के कला सूरज हमें सिखाना चाहता है, हम सीखना चाहते हैं, वो कोई भी गुरु बताएगा, वो वही बताता है। ये हमें याद रखना है। यहां हमें गड़बड़ी में नहीं पड़ना है कि हमें इस गुरु का प्रचार करना, उस गुरु का प्रचार करना है, ये साधनाएं करने, ये साधना। हर साधना उसी लक्ष्य की ओर ले जा रहा है कि दुनिया को स्वर्ग बनाना है। चाहे आप श्वास के बारे में प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप काली के उपासक हो, चाहे आप कृष्ण के उपासक हो, किसी के भी उपासक हो, वो तो आपकी उपासना टेक्निक है। लेकिन साधना आपको क्या करनी है? आपकी श्वास को बदलना है, आपका सोचने के ढंग बदलना है। और वो सोचने का ढंग ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ये कर सकूंगा कि नहीं, ये तो होगा ही, जिसे हम स्वप्निक सोचने का ढंग, जिसको हम ध्यान कहते हैं। अगर हम ये कर सके तो सहज ही में संपूर्ण दुनिया राम राज्य हो जाएगा। और यहां फिर राम राज्य का मतलब ये मत समझना कि कोई हिंदुओं का राज्य होगा। नहीं नहीं नहीं, सूरज का राज्य होगा, इक्ष्वाकुवंश का राज्य होगा। सूरज क्या बताता है हमको, हम भूल गए, हम सुनते ही नहीं। सूरज की किरणें हमें जिंदगी देती हैं, सूरज की किरणें हमें मन देता है, सूरज की किरणें हमें चित्त देता है, सूरज की किरणें हमें अहंकार देता है। ये तो हम बिल्कुल भूल गए। तो इसको हम कहां से प्राप्त कर सकेंगे? सूरज से प्राप्त करो। सूरज तो हमेशा देता रहता है, केवल इस होश में रहो, और इस होश में रहने के लिए यहीं पे लिखा हुआ है, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। और जहां भी सूरज की शक्तियों का उपयोग होना है वहां दो रंग हमेशा काम करते हैं, लाल और नारंगी, ऑरेंज एंड रेड। तो यूज इट, वी आर यूजिंग दिस। हमारा ध्वजा वो रंग देती है, तीनों रंग हम उपयोग करते हैं, नारंगी, हरा और सफेद, विद ब्लू सर्किल अशोक चक्र। तो ये हुआ असली रामायण जो तुमको सीखना है, जो हमको उपयोग में लाना है। और जाहिर है ये एक क्लास में तो मैं केवल यही बता सकूंगा कि इस तरह करो, लेकिन स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको आसन सीखना है, आपको प्राणायाम सीखना है, आपको ध्यान सीखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकेंगे, कैसे कर सकेंगे, इसके लिए हर सप्ताह आप लोग मिल ही रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने और अनेकों गुरुओं ने कई कई तरह की विधियां बताई हैं। तो हमारी सलाह यह है, अगर आप किसी एक गुरु के ऑलरेडी मेथड में हैं तो डोंट चेंज द मेथड, स्वप्न को बदलो। हम दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं इस विधि विधान से, बस साधनाओं को बदलने की कोई जरूरत नहीं, वे साधना आप इस काम में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गायत्री मंत्र का उपयोग कर सकें, क्योंकि मंत्र अपने आप में एक विशिष्ट शक्ति होता है, और इस तरह के समय में जब एक व्यक्ति ने अनंत अनंत गायत्री मंत्र का जप किया हो, गुरुजी ने 600 करोड़ मंत्र का जप किया, माताजी ने 600 करोड़ का मंत्र जप किया, इन सब मंत्रों का उन्होंने कहा कि केवल हमारे साथ तुम मिलकर 24 बार कर लो, तुम्हें 24,000 मंत्र का फल अगर मिलता हो तो उपयोग करने में क्या बुरा है। समझ में आ रहा ना बात? तो किस तरह आप प्रणालिका करेंगे, किस तरह आप आगे बढ़ेंगे, इसको अगर हम मन में रखते हुए इस रामायण के चरणों को धीरे धीरे, जिस तरह हम लोगों ने आज डिस्कस किया, कभी वर्क क्लास के रूप में एक दिन आप बैठ के ये कहना ना करके रियल उपासना कैसा करें वो प्रैक्टिस कराएं, खुद करें और दूसरों से कराएं, तो बहुत ही जल्दी एक साल के अंदर सारी दुनिया बदल जाएगी। इस आशा में कि यह आपको असली रामायण की ओर धकेल सका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
डॉक्टर जी, आपने अभी जो बताया, इट जस्ट ओपन माई माइंड that what I understood of Ramayana and how you have explained in context to this body and how we can practice it. It is just unbelievable that how deep our shastras are and how they have been sort of tapped into by our rishis. And we are so fortunate to have you here to have given this type of deep knowledge that we can understand and we can start practicing. Thank you so much for it. And on behalf of the management committee and the trustees of Bharatiya Mandir, I would like to thank you and also invite you for future talks in the Bharatiya Mandir. And I thank you, all those people who have attended this session. And on behalf of the Bharatiya Mandir, I would like to offer you a small token of Dakshina. Please accept. Thank you very much.
Jai Guru.